ओम शांति। एक राज्य था, सुखी राज्य था, राजा रानी और प्रजा भी बिल्कुल सुखी थे। लेकिन उस राजा को एक दिन अहंकार आ जाता है, तो वो महारानी से बात करते हुए बोलता है कि देखो मेरे कारण तुम महारानी हो। तो कहती ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मेरे भाग्य का खा रही हूँ, ये तो मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मैं इस राज्य की महारानी हूं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसको राज्य से ही निकाल देता है। तो अब ये महारानी भटकती हुई, भटकते भटकते एक सर्कस के टेंट के पास आ जाती है। तो अब इसको काम चाहिए होता है, तो सर्कस का मालिक उसको काम देता है, जितने भी पशु पक्षी उनके पास है सर्कस में उनको पानी पिलाना, वो ड्यूटी उसको मिल जाती है। तो सभी जानवरों को पानी पिलाती थी, बड़े प्यार से अपनी ड्यूटी कर रही होती है। उस समय जो हाथी होते हैं, तो हाथी में भी एक छोटा हाथी का बच्चा होता है, वो उनको पानी पिलाने नदी पर ले जाती है। और जब वो बाहर निकलते समय क्या होता था कि वह हाथी का बच्चा लुढ़क के फिर कीचड़ में फंस जाता था और मैला हो जाता था। तो फिर उसको साफ करती थी, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो फिर उसने क्या किया, उस हाथी को साफ करके, छोटा सा बच्चा हाथी का, उसको उठा के कीचड़ के बाहर लाया। उस बच्चे को भी अच्छा लगा और ये उनका क्रम चलता रहा चलता रहा। धीरे धीरे वो हाथी का जो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो रहा था, लेकिन ये तो ममता की मूरत उस बच्चे, उस हाथी को उठा के साइड में रख देती थी। और एक दिन अचानक उस सर्कस का जो मालिक था उसकी नजर पड़ी, अरे ये क्या कर रही है, हाथी को उठा रही है। तो वो उसको पूछता है, ये कैसे कर सकती हो तुम, ये कहां से सीख लिया, इतनी ताकत कहां से आई। तो फिर उसको वो सब कुछ बताती है। फिर बोलता है कि अभी हम अगले जिस राज्य में जाएंगे वहां पर ये शो दिखाएंगे, और अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। और ठीक अगले राज्य में पहुंचते ही इतनी भीड़, टेंट में जगह ही नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि अनाउंसमेंट एडवर्टाइज इतनी हो ही है जो सब लोग देखने के लिए आए हैं, और उस राज्य का राजा भी आया है। और शो शुरू हो जाता है और ये महिला उस हाथी को उठा रही है, इधर रखती है, उधर रखती है। सब लोग देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर वो राजा देखता है, इस महिला को तो मैंने कहीं देखा है, और फिर देखता है, अरे ये तो अपनी ही महारानी है कि सचमुच अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है व्यक्ति। तो मैं ही सर्कस और शेर को ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। 30 नवंबर 70 की मुरली मिली, उसमें बाप दादा ने वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस बताई है। ग्रुप है आदर कुमारों का, और बाबा ने कहा कि मेरे जो वैल्यूएबल वर्कर्स हैं, बच्चे हैं, वो कौन सी सर्कस करते हैं। वैसे जो टॉपिक मिला है सर्कस का शेर, ये तो एक मुहावरा है, इसका मीनिंग है कि वो शेर जो किसी काम का नहीं रहा है अभी, सर्कस का शेर है कि जो खुद की शिकार नहीं कर सकता, वो खाली नाम के लिए शेर है, वो खुद की शिकार नहीं कर सकता, लेकिन उसको जो रेडीमेड भोजन मिला है वो ऐसे शो करता है, ऐसे दिखाता है कि ये मेरा है। ऐसे ही कभी कभी हमारे से हो जाता है, मनन चिंतन करने की आदत नहीं होती है और अचानक जब टॉपिक मिल जाता है तब तब हम क्या करते हैं कि सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं और रेडीमेड जो फूड मिलता है ऐसा शो कर देते हैं कि बस तो असल में इस मुहावरे का अर्थ ये है कि खुद का नहीं है वो, किसी ने रेडीमेड आपके सामने रखा हुआ है, उसको ऐसे शो करना कि ये सब मेरा ही है, उसमें ताकत है ही नहीं कि मैं खुद शिकार कर सकूं। तो बाबा साकार मुरली हो या अव्यक्त मुरली हो, इस शेर को बहुत जगह पे यूज किया है बाबा ने। ज्ञान की भिन्न भिन्न पॉइंट्स को समझाने के लिए बाबा ने शेर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो शेर की तो लंबी लिस्ट मिली और सर्कस बाबा ने तीन प्रकार की बताई, तो हम तीन सर्कस देखेंगे कि ये जो स्टोरी हमने शुरुआत में देखी कि कुछ किए बिना कुछ ऐसे ही होगा नहीं, थ्योरी हमें पता है लेकिन प्रैक्टिकल में वो करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो इस मुरली की जो शुरुआत है, बाबा ने आते ही पूछा कि आप सर्वशक्तिवान हो, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा कि जो सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिमान बनना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा कि जो बन चुके हैं वो अभी मेरे सामने आओ। और बाबा ने इतना सुंदर, छोटी सी मुरली है, मास्टर सर्वशक्तिमान की पूरी एक परिभाषा इसमें बताई है, बिल्कुल इसी स्टोरी की तरह कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हाथी को भी उठा सकते हैं। सर्कस में जो हाथी है वो जैसे उस रानी ने उठाया, हम भी उठा सकते हैं, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी छोटे हाथी से, डायरेक्ट बड़ा हाथी हम उठा नहीं सकते। तो ये छोटी सी शुरुआत मैं भी कर रहा हूँ। तो पहली सर्कस बाबा ने बताई कि मेरे वैल्यूएबल वर्कर्स सामने बैठे हुए हैं, तो बाबा ने कहा बड़े खुश हो रहे वो टाइटल सुन के कि वैल्यूएबल वर्कर्स सेवाधारी, लेकिन कहा कि वर्कर्स कभी कभी सर्कस दिखाते हैं। और पहली सर्कस बाबा ने बताई है कि ये वर्कर्स क्या करते हैं कि अपनी कमी कमजोरी को मिटाने के बजाय दूसरों की कमी कमजोरियों पर, दूसरों की कमजोरियों पर सर्कस दिखाते हैं। और फिर इसमें तीन बातें बाबा ने विशेष बताई कि चाहे व्यवहार में हम व्यवहार से ऐसा व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ जैसे कि सर्कस कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि व्यवहार के बाद परिवार, परिवार में भी हम अपना रोब जमाते हैं। और तीसरा बताया कि परमार्थ, कि इसमें भी बच्चे कैसे सर्कस करते हैं। मैं 2 बजे उठता हूं तो पड़ोसी को कम से कम 4 बजे तो उठना ही चाहिए, नहीं तो फिर हमारा व्यवहार इतना बदल जाता है कि अरे देखो कुछ काम धंधा तो है नहीं, सोता रहता है, और जब भी मौका मिले तो फिर तो ये बच्चों की सर्कस बाबा ने बताई कि खुद पर फोकस करने के बजाय दूसरों के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते। फिर दूसरी सर्कस बाबा ने बताई, ये हो गई जमीन पर। और सर्कस में क्या होता है, झूले होते हैं, बहुत लंबी हाइट में झूले लगे हुए होते हैं और वो करतब दिखाते हैं कि एक झूले से दूसरे झूले पर छलांग लगाते। तो बाबा ने कहा ये बच्चे क्या करते हैं कि व्यर्थ के झूले में झूलते रहते इस झूले से उस झूले पर और करतब दिखाते हैं, लेकिन इसमें इतने एक्सपर्ट हो गए हैं बाबा ऊपर से देख के, बच्चों के एक्टिविटीज देख के खुश होते हैं, बोलते कि देखो वास्तव में बच्चों को अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, व्यर्थ के झूले में झूल रहे हैं। और तीसरी सर्कस बाबा ने बताई, और क्या होता है सर्कस में, एक बोना व्यक्ति होता है, क्या बोलते हैं उसको, जोकर, वो जोकर क्या किया होता है, फुल डेकोरेटेड होता है, उसके कपड़े, उसका चेहरा कलरफुल होता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे भी क्या करते हैं, अपना रूप चेंज करते हैं, अपनी स्थिति बार बार चेंज करते हैं। तो अपनी स्थिति को चेंज करने की सर्कस बच्चे करते हैं, तो जैसे कि वो जोकर की तरह। जैसे देखा जाए दुनिया में भी जितने भी ये जोकर हैं, दूसरों को हंसाने वाले, अंदर से खुद बहुत दुखी होते हैं। जैसे हमने चौथा पॉइंट देखा था झील एंड इंतजम का, कि हम क्या शो करना है, वो दुनिया को तो हंसाते हैं लेकिन बेचारे अंदर से तो दुखी होते हैं। तो ये सर्कस बाबा को पसंद नहीं है। अब हम आते हैं शेर की तरफ। तो वैरायटी शेर है, साकार मुरली में भी बाबा ने बताया। तो एक तो एक कहानी है कि शेर आया कि आया, ये पॉइंट बाबा बताते हैं कि काल आया कि आया। हाँ, विनाश खड़ा है सामने, वो आया कि आया, वो एक दिन आने ही वाला है, लेकिन बच्चे क्या हो जाएंगे उस समय, केयरलेस हो जाएंगे। इस बात को बाबा स्पष्ट करने के लिए वो बात समझाते। फिर बाबा बच्चों को पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करे, इसलिए बाबा कहते कि आपको 20 नाखूनों का जोर लगाना है। जैसे शेर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए क्या करता है, 20 नाखूनों का जोर लगाता है। फिर बाबा अपने बच्चों को टाइटल देते हैं, जैसे दादी जी को दिया कि पंजाब का शेर हो। तो कभी बाबा स्मृति दिलाते कि देखो भगत लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, आप उस शेर पर सवार होने वाली, शेर की सवारी करने वाली शक्ति रूप हो, जो अभी अभी नवरात्रि हुई है। तो बाबा आप हमें वो शक्ति रूप अपना इमर्ज कराते। कभी बाबा हमें सतयुग की याद दिलाते हैं कि देखो सतयुग में गाय और शेर साथ में पानी पिएंगे, एक घाट पर खेलेंगे। तो ये किसकी निशानी है, प्यार की निशानी। तो ऐसी वैरायटी बातें बाबा शेर की समझाते हैं। तो कभी बाबा ने बताया कि जो माया शेर है, अब हम टॉपिक पर आते हैं कि ये जो सर्कस का शेर है ये माया है। तो इसी माया को बाबा ने शेर तो कह दिया, लेकिन फिर बच्चों को हल्का करने के लिए बोला ये जो शेर है कागज का शेर है, इससे आपको डरना नहीं है। तो बाबा ने अलग अलग विधि बताई है इस शेर को वश करने की, इस शेर को जाल में फंसाने की, इस शेर को मूर्छित करने की, और इस शेर को ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त करनी है। तो बाबा ने कहा कि अभी ये शेर नजदीक ही न आए, माया रूपी शेर, इसलिए क्या करो, हाँ, आग जला के रखो। जैसे कोई भी पशु है वो आपके ऊपर अटैक न करे, इसके लिए सेफ्टी हम क्या कर सकते हैं, आग जला कर रख सकते हैं स्थूल में। वैसे हमें भी योग की अग्नि हम जला कर रखेंगे साथ में, तो ये माया रूपी शेर हमारे नजदीक आ ही नहीं सकता। फिर है बाबा ने कहा कि अगर उसने अटैक कर ही दिया है आपके ऊपर, आपको क्या करना है, एक शब्द यूज करना है बस, बाबा। तो उस बाबा शब्द से, उस बाबा शब्द से वो शेर मूर्छित हो जाएगा। और तीसरा कि बाबा ने कहा कि आप सेवा करो, सेवा के पॉइंट समझाते हुए बाबा ने कहा है कि बहुत सारे शेर को आप जाल में फंसा सकते हो, वो शेर आपके सामने आते ही बकरी बन जाएगा। ऐसा जाल आपको बिछाना है, ये माताओं के साथ मुलाकात बाबा कर रहे हैं कि आप खुद शेर बन जाओ, तो जो शेर है दुनिया वाले वो आपके सामने बकरी बन जाएंगे, और एक आ जाए तो उनकी लाइन लग जाएंगी। तो अभी भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो बड़े बड़े शेर फंसते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ये थी वंडरफुल वर्कर्स की सर्कस। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। टॉपिक है बोलती निगाहें। तो हमने भी थोड़ा सर्च किया, पहले तो लाइफ में फर्स्ट टाइम बोल रहे थे कभी बोला नहीं है, तो थोड़ा सर्च करके देखा था। तो तो एक जगह एक बात मिली कि एक जो बोलती निगाहें है हमारे, जैसे कि हमारी वृत्ति कहो, हमारी भावनाएं, तो ये हमारे सदा साथ रहती है। जैसे कि हम घर में अकेले हैं समझो, या फिर लाइट गई है, घर में कोई नहीं है, तो हमारी निगाहें सदा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है कि कुछ है, कुछ महसूस करती है कि आगे पीछे कुछ है, तो मना हमारा सदा साथ देती है। उसमें एक बात कही थी कि हमारा साया भी अंधेरे में हमारा साथ छोड़ जाता है, लेकिन हमारी निगाहें सदा हमारे साथ रहती है, कुछ ना कुछ हमसे बात करती रहती है। तो बहुत बातें करती है, तो निगाहों का बोलना मना हमारी जो वृत्ति है, वो हमारी जो भावना है, उसे हमें समझना भी है। जैसे कि अभी बाबा कहते हैं कि अव्यक्त मुरलियों में भी समझाते हैं कि मना हम अगर चेक करें कि हम ब्राह्मणों की निगाहें भी कैसे बोलती है, क्या बोलती है, तो जैसे बाबा अव्यक्त मुरली चलाते हैं तो कहते हैं कभी कभी कि बच्चे समझा, मुरली खत्म होती है तो सभी कहते हैं कि समझा, लेकिन नहीं समझा होगा तो कैसे पता चलेगा समझा नहीं है। तो जैसे कि किसी की तरफ देखकर बाबा पूछेंगे समझा, तो समझा भी कहेगा, फिर इधर उधर देखेगा, ऐसे आंखें घुमाते रहेगा कि उसने, तो फिर पता चलेगा। इसे मैंने स्थूल निगाहें भी उसका जवाब देती है कि कुछ समझा है या नहीं समझा। कल भी हमने लाइट के ऊपर थोड़ा क्लास सुनी थी, तो उसमें भी एक ऐसा लगा कि हमारी जो ये बोलती निगाहें है, जो हमारी भावनाएं है, वृत्ति है, वो उसकी भी बोल लाइट होने चाहिए, कभी हेवी ना होने। हेवी होंगे तो हमारे मतलब शरीर के इस फेस पर, इस पार्ट पर थोड़ा असर पड़ता है। तो ये भी अगर हेवी हो गया तो कभी आगे गिरेगा, कभी पीछे गिरेगा, मतलब नींद आती है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो बोलती निगाहें हमारे मना वृत्ति जो है तो श्रेष्ठ रहे। बाबा कहते हैं कि बाबा की अगर निगाहें मना हमारे प्रति क्या बोलती है कि तुम बच्चे कितने श्रेष्ठ हो, कितने महान हो, सभी के प्रति बाबा ऐसे कहते हैं। तो हम भी स्वयं के प्रति हमारी ये निगाहें वृत्ति ऐसी बोलती रहे कि हम भी कितने महान है। तो स्वयं के प्रति जैसे बोलते हैं वैसे दूसरों के प्रति भी हमें ऐसे लगे, किसी को देखते हैं तो, नहीं तो ऐसा प्रश्न ना उठे कि बाबा आपने हमें तो कहा ठीक है हम चल रहे हैं, इनको कैसे आप महान कहते हो, ऐसे है ना, किसी का अवगुण दिखाई देते हैं तो संकल्प आ जाता है, तो ये भी ना हो बाबा कहते हैं। और बाबा कहते कि इन आंखों से आप जो देखते हो सब विनाश होने वाला है, अभी कुछ नहीं रहे बचेगा। तो जगदीश भाई जी ने भी एक बात कही थी कि इन आंखों से तुम जो देखते हो वो सब रिफाइन होता जाएगा, और जितना रिफाइन होता जाएगा, जितनी प्यारी चीजें बनती जाएंगी, उतना विनाश नजदीक आ रहा है। ये हमारी निगाह है, हमारी वृत्ति हमें बोल दे कि रिफाइन जितना हो रहा है उतना विनाश नजदीक है, जितना रिफाइन हो रहा है उतना विनाश नजदीक है। तो ऐसे हमारे वृत्ति के बोल होते हैं। शांति।